السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت, وعدے کو ضائع کرنا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. وعدے کو ضائع کرنا, ضیاء الاحدی. جیسے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں علامات قیامت, اور پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پڑھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں, اور جو بھی وقت ہمیں ملا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو موقع فراہم کیا ہے اس موقع سے, اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں, اور اس میں ایسا کوئی سامان ہم تیار کر لیں یا ایسی ہم کوئی پونجی تیار کر لیں آخرت کے لیے جو ہمارے لیے وہاں پر نفع بخش ہو, آخرت میں فائدہ مند ہو. اور سب سے اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اصل چیز ہے علم. علم اگر ہوگا تو ہی ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر علم نہیں ہے, آگہی نہیں ہے, تو چاہے ہمارے پاس وقت ہی کیوں نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے آج اگر ہم اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہے آخرت کی تیاری. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کر جائیں جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. وعدے کو ضائع کرنا, قیامت کے قریب لوگ وعدے کی پرواہ نہیں کریں گے. ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف بکم وبزمان یوشک ان یاتی یغربل الناس فیہ غربلۃ ویبقى حسالۃ من الناس قد مرجت عہودہم واماناتہم فاختلفوا وکانوا ہکذا وشبک بین اصابعیہ قالوا کیف بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ذلك قال تاخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم رواه ابن ماجہ حدیث صحیح. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے, وعدہ اور امانت خلط ملت ہو جائیں گے, یعنی مل جائیں گے, مکس ہو جائیں گے, یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی, لوگ بالکل بگڑ جائیں گے, اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے, اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں, یعنی لوگ کیسے گھل مل جائیں گے اور کیسے آپس میں مکس ہو جائیں گے. تو آپ نے اس کو پریکٹیکلی اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھایا. اور یہ حدیث ایکچولی آپ کا انگلیوں سے اشارہ کرنا اس نام سے مشہور ہوتی ہے. جن احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اشاروں سے کچھ فرمایا یا اپنی انگلی اٹھائی تو وہ حدیثیں الگ سے مشہور ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب بھی احادیث بیان کرتے تھے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو بھی نوٹ کرتے تھے, اور جب آپ نے بات کرتے کرتے, حدیث بیان کرتے کرتے کوئی اشارہ کیا ہو انگلی سے یا ہاتھوں سے تو صحابہ اکرام بھی سیم وہی اشارہ کرتے تھے. تو یعنی یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو جو بھی صحابی اب اس حدیث کو روایت کریں گے وہ بھی ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتائیں گے. تو بہرحال آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پیوست کر کے دکھایا. صحابہ اکرام نے عرض کیا اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا, جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا, اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا. اور وعدے کے بارے میں ایک مسند احمد کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جسے اپنے وعدے کا لحاظ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اب یہ حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ لوگ اچھے اور برے لوگوں میں فصل ڈال دی جائے گی, نہیں الگ الگ کر دیے جائیں گے, और दूसरी हदीस से भी पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना तआला जो अच्छे लोग होंगे उनकी रूह पहले ही कब्ज़ कर लेगा, जो नेक लोग होंगे वो दुनिया से उठा लिए जाएंगे और सिर्फ बुरे लोग बाकी रह जाएंगे। वादा और अमानत खल्त मल्त हो जाएंगे, यानी लोग उसकी परवाह नहीं करेंगे। एक तो है अमानतदारी, हम सब जानते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, पीछे भी हमने सेम हदीस पढ़ी थी। और दूसरा है वादा, जैसे कि हदीस में है, जिससे अपने वादे का लिहाज नहीं उसका कोई दीन नहीं। अब ये वादा एक्चुअली क्या होता है, देखा जाए तो अक्द भी एक वादा है। जब हमारी यहाँ परेशानियाँ होती हैं, निकाह होते हैं, तो निकाह का मतलब ही क्या है, वादा। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मुहायदा होता है, तो जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए। फिर किसी की बात, किसी का कोई राज या किसी ने आपके पास कोई ऐसी चीज़ रखवाई हो, ये सब अमानत में आ जाएगा। और इसी तरह से वादा ये भी है कि आप कोई काम को, यानी बाज़ों का इंसान अपने आप से भी वादा करता है, और आप किसी काम के करने का इरादा करते हैं और आप दिल में पहले ही ये तय कर लेते हैं। जैसे आपने कभी कोई अच्छा लेक्चर सुना, कभी कुरान की कोई ऐसी आयत सामने आ गई कि आपका दिल उसकी वजह से बहुत ही नर्म हो गया, और उस वक्त आप डिसाइड कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि अच्छा आइंदा मैं कभी ये काम नहीं करूँगी, नहीं कोई बुरा काम। और आप वो लेक्चर सुनकर सोचते हैं कि अच्छा मैं हमेशा आइंदा कोई अच्छा काम करूँगी। तो अब आपने जब ये वादा कर लिया अपने आप से, तब आपको इसको निभाना है। हमारे ये क्या होता है कि जज्बात में आकर अक्सर लोग बहुत सारे बड़े बड़े वादे कर लेते हैं कि अच्छा मैं इतना इन्फाक करूँगी, मैं ये काम करूँगी, अपना वक्त लगाऊंगी, और ऐसा और वैसा बहुत सारी बातें, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई करने को तैयार नहीं होता। तो ये भी वादा है जो इंसान अपने आप से करता है। तो वादा ये नहीं कि कोई दूसरे से आप करें, एक वादा वो है जो इंसान अपने आप से करता है, एक वादा है जो अल्लाह सुबहान तआला से करता है, और एक वादा जो कि दूसरों से करता है। अगर किसी को मिलने का वक्त दिया तो उसको बराबर उस वक्त पर मिलना चाहिए। तो जो भी आपने कमिटमेंट किया हो उसको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको वो वाक़या याद होगा, तफसीर में मौजूद है ये वाक़या, कोई सही ऑथेंटिक हदीस की बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन तफासिर में मौजूद है कि एक शख्स ने उसको एक्चुअली फांसी की सज़ा, या सॉरी फांसी की सज़ा तो नहीं कहना चाहिए, उसको सज़ा हो गई क्योंकि उसके हाथ से किसी दूसरे का शायद कत्ल हो गया था गलती से, या इसी तरह की कोई बात थी। तो उसके बदले में उसको जब कसास दिया गया तो उसने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए, और उन 3 दिनों में मैं आप वापस आकर अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चों से कहकर नहीं आया, और उन्हें उन्हें कोई ख़बर नहीं है मेरी कि मैं कहाँ हूँ, और अगर मैं इस तरह से इस कसास के बदले में जब कत्ल कर दिया जाऊँ तो मेरे बीवी बच्चे तो इंतज़ार ही करते रहेंगे। तो एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उससे एक कत्ल हुआ था उस शख्स से, अब उसको छोड़ा तो नहीं जा सकता था, क्योंकि अब कैसे मालूम पड़ेगा कि वो चला जाएगा और आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए उससे कहा गया कि कौन है जो तुम्हारी ज़मानत दे। अब वो वहाँ के लिए, मदीना के लिए वो अननोन था शख्स, तो कोई उसका दोस्त भी नहीं था वहाँ, कोई उसका रिश्तेदार भी नहीं था। तो एक सहाबी ने कहा कि मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ। बहरहाल उन्होंने इसकी ज़मानत ले ली। अब 3 दिन गुजर गए और 3रे दिन का जो आखिरी वक्त था वो गुजरने लगा। अब सब लोग बेचैनी से इंतज़ार करने लगे कि देखते हैं कि आया वो शख्स आता है या नहीं आता है। उमर रदी अल्लाह अन्हु उस वक्त खलीफा थे। अब उमर रदी अल्लाह अन्हु ने वो सहाबी से कहा जिन्होंने उस शख्स की ज़मानत ली थी कि अगर वो नहीं आता है तो उसके बदले में हम आपकी जान ले लेंगे, यानी कसास के तौर पर। और वो सहाबी तैयार भी हो गए। आप देखिए कैसा, यानी एक दूसरे का कैसा ख्याल था। वो सहाबी ने किस बिना पर उसकी ज़मानत ली कि वो शख्स को जानते तक नहीं, और वो शख्स भी कैसा अमानतदार कि उसने कैसे अपने वादे को निभाया और कैसे अमानत का हक अदा किया। तो कहा जाता कि जब आखिरी वक्त गुजरने लगा तो वो शख्स आ गया, तो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। खुद उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा कि तुम चाहो तो फरार हो सकते थे, और ये जान का मामला था, तुम्हारी जान जाने वाली थी, क्या चीज़ है जो तुम्हें ले आई। उसने कहा कि जो इन्हें जिस चीज़ का मैंने वादा किया था मैं भला उसे कैसे फरामोश कर सकता हूँ, और ये तो हमारे दीन का हिस्सा जिसमें हमारे रसूल ने ये फरमाया। जब उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उससे ये बात सुनी तो आप बहुत ज़्यादा उससे मुतासर हुए और रहम आया उस पर, और आपने उस शख्स को छोड़ दिया। तो एक वक्त ऐसा था, आप देखें, ये सहाबे कराम का ज़माना था और अल्हम्दुलिल्लाह अमानतदारी, वादे का लिहाज, पास लिहाज बाकी था और लोग उसकी अहमियत को जानते थे और उसको निभाते भी थे। लेकिन आज का दौर हम देखते हैं कि न वादे का पास लिहाज है और न ही अमानतदारी है। अमानत तो बिल्कुल ही मफकूद ही होकर रह गई है, यानी ख़त्म हो गई है ऐसे लगता है, इल्ला ये कि बस चंद आपको ऐसे वो वाक़ नज़र आ जाए। तो ये दो चीज़ें आपने फरमाई और फिर आपने फरमाया कि लोग बिल्कुल बिगड़ जाएंगे और अच्छे और बुरे लोग इस तरह से आपस में घुल मिल जाएंगे। और आपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में पैवस्त कर दी, जैसे हम हाथ, आप दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डालिए और फिर देखिए कि कैसे वो आपस में मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यानी अच्छे लोग भी बुरे लोगों को बुरा नहीं जानेंगे और वो अच्छे लोग भी उन बुरे लोगों के साथ मिलकर उन्हीं के रंग में रंग जाएंगे, ये भी मानी हो सकते हैं। और दूसरा मानी ये हो सकता है कि वो अच्छे लोग, ठीक है वो तो जानेंगे कि ये बात गलत है, लेकिन उनकी दोस्तियाँ ऐसे ही बुरे लोगों से होगी, उन्हीं के साथ उठना बैठना होगा, यानी वो बुराई को बुराई नहीं जानेंगे। हालांकि हो सकता है खुद ना करते हों बुराई, लेकिन वो बुराई को बुराई नहीं जानेंगे और ना उनको रोकेंगे, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यहूद के उलमा किया करते थे कि सूद की हुरमत पर बयान देते, आज मस्जिदों में खुतबे होते उनके या वो लोग उसके बारे में बताते, सूद और जिना के बारे में, खंजीर के बारे में, और दूसरे दिन उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते और उन्हीं लोगों के साथ खाना खाते थे जो कि सूद का कारोबार करते थे। तो अब देखिए वही वाली बात है कि बुरे लोगों की सोहबत से भी बचना चाहिए, वरना क्या होता है कि इंसान धीरे धीरे उन्हीं के रंग में रंग जाता है बुरे लोगों की सोहबत में। तो इस तरह से खलतमंद हो जाएंगे, इस तरह से आपस में पैवस्त हो जाएंगे वो लोग या मिल जाएंगे। और आपने एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगली में डालकर दिखाई। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि अगर ऐसा वक्त हम पर आ जाए तो फिर हम क्या करें। तो आपने इरशाद फरमाया जिसे नेकी समझो उस पर अमल करना। अब ये हमारे लिए यहाँ पर गौर करने की बात है कि अब मैं और आप क्या करें, यानी हमारे लिए इसमें जो प्रैक्टिकल टिप है वो क्या है। तो वो ये है कि जिसे नेकी समझो उस पर अमल करना और जिसे बुरा समझो उसे छोड़ देना। क्योंकि आप देखिए अच्छाई और बुराई बिल्कुल वाजे है, चाहे वो एक चोर ही क्यों ना हो, वो चोर भी जानता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। जब वो चोरी करता है तो वो उसके लिए अपने आप को ये नहीं कहता कि ये चोरी अच्छा काम है, वो अपने बच्चे को कभी चोर नहीं बनाएगा। तो इसलिए जिसे अच्छा समझो उस पर अमल करो, जिसे बुरा समझो उसे छोड़ दो। और उस वक्त अपने काबिल एतमाद लोगों के पास चले जाना। एक और तीसरी बात हमें मिलती है कि ऐसे जो ट्रस्टेबल आपके फ्रेंड्स हों, आपके दोस्त हों, आपके मिलने जुलने वाले हों, जो कि जिन पर आप एतमाद कर सकते हों, जो भरोसे के काबिल लोग हों, उनके पास चले जाना और दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देना। यानी बुराई इतनी आम हो जाएगी कि आप बुराई को बुराई बोलेंगे भी तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अब उनको जब वो सुधरना ही नहीं चाहते सामने वाले, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो और तुम चले जाओ कहीं अच्छी जगह। और वैसे भी आप देखिए जहाँ बुराई आम हो तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, यानी उस बुराई से बचकर रहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी जगह इंसान तलाश कर ले जहाँ पर अच्छे लोग रहते हों, जहाँ पर नेकियाँ करना आसान हो और गुनाह करना मुश्किल हो। बिला वजह अपने आप को आजमाइश में ना डाले, बिला वजह अपने आप को फितनों में ना इन्वॉल्व करे। तो ये तीन बातें हैं, जिसे नेकी समझो उस पर अमल करना, जिसे बुरा समझो उसे छोड़ देना, अपने काबिल एतमाद लोगों के पास चले जाना। तो ये तीन चीज़ें हमें करने की है। और जो लोग ये बुरे काम करे होंगे उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए फिर, क्योंकि उनको नसीहत रास नहीं आती। फिर क़तअ रहमी आम हो जाएगी, क़तियतुर रहम। तो ये क़तअ रहमी क्या है? रहम रहम से निकला है, हम सब जानते हैं, जैसे कि रहमी रिश्ते हम कहते हैं। तो वो रिश्ते जो खून के रिश्ते होते हैं, जिनका आपस, यानी जैसे एक ही माँ की औलाद, जिनका आपस में रहम से ताल्लुक़ हो, रहम की वजह से वो जुड़े हों, आपस में भाई बहन, ये सारे रिश्ते इसमें आ जाएंगे। और क़तअ रहमी हम सब जानते हैं कि उससे जन्नत में दाखिला ममनू करार दिया गया है, कि अगर कोई रिश्तों को, रहम के रिश्तों को काटता है तो वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आप देखिए कि ऐसे ही हो रहा है, जैसे कि अभी एक दो दिन पहले ही की बात है कि कहीं किसी प्रोग्राम में डिस्कशन चल रहा था, कोई तरबियती कैंप था, उसमें यही डिस्कशन चल रहा था। कुरान की वो आयत थी सूरह नसा की पहली वाली आयत, तो उस पर डिस्कशन में यही बात हो रही थी कि आप देखिए पहले कैसा था कि हर एक के घर दरवाजे दिल खुले होते थे एक दूसरे के लिए और खुसूसन रिश्तेदारों के लिए। लेकिन अब तो इतना यानी सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि घर तंग पड़ गए हैं, हमारे दस्तरखान पर मेहमान नहीं होते, बस मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, बस खत्म। फिर आजकल फ्रिज पर लॉक लगे होते हैं कि जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं तो उनके लिए भी फ्रिज खोलने की इजाजत नहीं होती। फिर बस सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब रिश्तेदारियां आम होती हैं, जब रिश्तेदारियां निभाई जाती हैं और लोग एक रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाते हैं, तो कुछ माओं की ऐसी आदत होती है कि बंद कमरे में अपने बच्चों को सारी चीजें खिला दी और जो बाकी के लोग घर में मेहमान आए हैं या अपने रिश्तेदारों के बच्चे हैं उनको कुछ नहीं दिया। तो आप देखिए कितने थुड़दिले पन की निशानी है ना, कितने छोटे दिल की निशानी है। यानी न वसत कल्ब है और ना ही वो जर्फ है हमारे अंदर आज, कि सिर्फ अपने अपने बच्चे, यानी हर चीज़ बस मैं, मेरे बच्चे, ख़त्म। दूसरे लोगों को मिले ना मिले और उससे कतर रहमी हो रही हो, और आप देखना कि कितने छोटे दिल की अलामत है ये, कितनी तंग दिल की अलामत है ये, कि सिर्फ अपने बच्चों को दे देना और बाकी के बच्चों को महरूम कर देना। कम अज़ कम जो घर में आए हुए बच्चे हैं, मेहमान हैं, उसमें तो बराबर तकसीम किया जाए ना, यानी सबको बराबर दिया जाए। तो कैसा हमारा जर्फ हो गया है। तो उस डिस्कशन में यही बात चल रही थी कि हमारे फ्रिज लॉक हो गए हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जो करीबी लोग हैं उनके बच्चे जब आते हैं तो उनके लिए हम कोई खुले दिल से ना उनको कोई चीज़ खिलाते पिलाते हैं और ना ही उन पर कुछ खर्च करना चाहते हैं। तो ये भी कतर रहमी में आएगा, क़यामत के करीब कतर रहमी आम होगी। अन तारिक इब्न शिहाबिन रदी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न बैन यदि सआति تسنيم الخاصة وفش التجارة حتى تؤين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم رواه أحمد حديث صحيح۔ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، पता रहमी झूठी गवाही देना, सच्ची गवाही को छुपाना और कलम का जाहिर होना। तो यह हदीस हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उस हदीस में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें आम होंगी। तो वहाँ पर भी कतर रहमी की बात थी, झूठी गवाही की बात थी, सच्ची गवाही को छुपाने की बात थी, कलम के जाहिर होने की बात थी और शौहर की तिजारत में बीवी का साथ देना साबित था। यहाँ पर भी सेम बात है, लेकिन यहाँ पर ख़ासतौर से फोकस किया गया है क़तअ रहमी को। एक और उससे मिलती जुलती हदीस से पहले हम वो देख लेते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन यदि सआति तस्लीमुल ख़ासति व तफश्शु तिजारति हत्ता तुइनुल मरातु ज़ौजहा अला तिजारा व तुक़्तउल अरहाम रवाहु अहमद हदीस सही। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले जान पहचान वालों को सलाम करना, तिजारत का आम होना हत्ता कि तिजारत में बीवी अपने शौहर की मावन होगी और क़तअ रहमी आम हो जाएगी। तो एक और हदीस से पता चलता है अबू दाऊद की, कि जिसने 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से तर्क ताल्लुक़ किया और वफात पा गया तो वह जहन्नम में जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। लेकिन जानिए, ये सब चीज़ें जो देखने में आती हैं ज़्यादा यहाँ इंडिया में देखने में आती हैं, कि मतलब समझ भी नहीं आता कि रीज़न क्या है। जैसे कि बाहर मुल्कों में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर रिश्तेदारियों की भी बहुत अहमियत होती है और इवन जो हमारे जान पहचान वाले हैं उनसे भी मोहब्बत बहुत हो जाती है। लेकिन हो सकता है जब यहाँ रहने लगे तो ये बात शायद हम उस वक्त फेस करें कि यहाँ पर रिश्तेदारियों में इस कदर नाचाकी और इस कदर क्या कहना चाहिए, बदगुमानी और आपस में बातचीत का बंद होना। कई लोग ऐसे हैं कि जो जिनके साल साल गुजर चुके हैं जो अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, इन्हीं कतअ ताल्लुक इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक दूसरे के बच्चों की शादियों में भी जाना गवारा नहीं करते। सगे भाई हैं, सगी बहनें हैं या सगे भाई बहन हैं, लेकिन 8-8 साल 10-10 साल गुजर चुके हैं, उनके आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है। भाई भाई के चेहरे को देखकर मुंह फेर लेता है और एक दूसरे का आमना सामना भी गवारा नहीं है। दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है कि इवन कहा जाता है, यानी सिर्फ कहा नहीं जाता, ये तो देखा है दीवारों पर लिखे हुए, कि दीवारों पर एक दूसरे के खिलाफ ऐसे जुमले लिखे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। यानी कैसा वाकई में क़ुर्ब क़यामत की निशानी है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दे दी थी इस बात की कि कतअ रहमी आम हो जाएगी, और कतअ रहमी ख़ास वही है कि जो खून के रिश्तों को काटना। तो अब आप देखें कि 3 दिन से ज्यादातर के ताल्लुक से मना किया गया, तो यहां पर तो 3 3 साल गुजर गए हैं और ये जहन्नम की वईद सुनाई गई है। और अगर हम रिश्तेदार आपस में ये सोच लें कि जब हम इस तरह से क़त्अ ताल्लुक करते हैं, तो हम ये सोच लें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इस क़त्अ ताल्लुक की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं, तो कौन कौन ये क़त्अ ताल्लुक करना गवारा करे। और जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किया करते थे ना कि वो आग के करीब हाथ ले जाते थे, और जैसे उसकी जब उसकी आग उनके हाथ को लगती यानी उसकी गर्मी लगती, तो वो पीछे हटाते थे और कहते थे कि ए उमर, क्या बर्दाश्त कर सकता है ये आग? अगर नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा? देखिए आप, ये अक्लमंद थे सहाबे कराम, वो जन्नत और दोजख को गोया कि अपनी आँखों से देखते थे, और आज हमारे सामने जहन्नम का जिक्र आता है लेकिन हम पर कोई असर नहीं होता। लेकिन आप देखिए, हम तो बिल्कुल, हम भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ये आग भी, दुनिया की आग भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और मुझे हमेशा मिसाल याद आती है, आपने बहुत बहुत दफ़ा पहले भी सुना होगा कि चूंकि हम ख़वातीन हैं ना, रोटी डालने से हमारा वास्ता पड़ता रहता है, जब हम रोटी डालते हैं रोटी बहुत फूलती है, तो आप देखिए कि वो जब रोटी के अंदर से भाप निकलती है, रोटी कहीं से फट जाए और आप रोटी को सेंक रहे हों, आपकी उंगलियाँ वहीं हों रोटी के ऊपर सेंकते सेंकते, और वो रोटी में से भाप निकलने लगे या आपकी उंगली उस रोटी के अंदर चली जाती, तो आप देखिए कितनी तकलीफदेह सूरत हाल होती है। यानी आग के चटके से लगने से भी ज़्यादा वो भाप होती है जिसकी वजह से छाला आ जाता है आपकी उंगली को। हम सब इस प्रोसेस से गुजरे हैं, और हर खातून जिसने भी रोटी बनाई है वो सब वो जानती है इस बात को। तो जब हमसे भाप गवारा नहीं होती, वो भाप इतनी तकलीफदेह होती है रोटी की, तो आप सोचें कि वो आग कितनी तकलीफदेह होगी, और ये दुनिया की आग नहीं होगी, वो तो जहन्नम की आग होगी। तो सिर्फ क़त्अ ताल्लुक़ की वजह से एक शख्स जिसने 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से क़त्अ ताल्लुक़ अख्तियार किया, क़त्अ रहमी की, उस वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा। तो यहाँ पर दरअसल उसकी अहमियत को बताना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को हमें सुना रहे हैं और सहाबे किराम ने हम तक इस हदीस को पहुँचाया, क्यों? क्योंकि हम इस कबीह, इस बुरे काम, इस बुरे फेल से बच जाएं। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से जो भी सुन रहे हो, अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी का कोई किसी से ताल्लुक क़त्अ हो गया हो अपने रिश्तेदारों में से, या फिर चाहे वो रहम के रिश्ते हो, चाहे वो मिलने जुलने वाले लोग हों, लेकिन अगर आपस में ताल्लुकात ख़राब हो गए हों, तो आप पहल कर लें, और सिर्फ अल्लाह की खातिर, और सिर्फ इस खातिर कि आप इस जहन्नुम की आग से बच जाएं। और हम में से कौन नहीं बचना चाहेगा आप बताएं? हम में से हर कोई आग से बचना चाहता है, चाहे वो कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, क्योंकि तकलीफ़ हर एक को बराबर होती है। यानी जो स्किन अल्लाह ताला ने हमारी बनाई है, वो तकलीफ जैसे एक को होती है वैसे ही दूसरे को होती है। तो उस जहन्नम की आग से बचने के लिए क़त्अ रहमी से हम परहेज़ करें, अपने जो रिश्तेदारों के ताल्लुकात हैं उसको निभाएं। सामने वाला अगर आपसे नहीं भी मिलना चाह रहा है, तब भी आप कम अज़ कम सलाम दुआ की हद तक उससे ज़रूर राबता रखें, और महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक को इस्तवार कर लें जिनसे ताल्लुकात में ख़राबी पैदा हो गई हो। तो क़त्अ रहमी से हम लोग परहेज़ करें। हक़ को छुपाना, क़यामत से पहले हक़ को छुपाने वाले लोग पैदा होंगे। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बैन यदी सआती शहादतुज़्ज़ूरी व कितमानुल हक़। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले झूठी गवाही देने वाले और हक़ को छुपाने वाले होंगे। क़यामत से पहले लोग सच्ची गवाही छुपाएंगे और झूठी गवाही देंगे। अन तारिक़ इब्ने शिहाबिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बैन यदी सआती तस्लीमन ख़ासा व फश्शु तिजारा हत्ता तुइनुल मरातु ज़ौजहा अला तिजारा वक़त अरहाम व शहादत ज़ूर व कितमान शहादत हक़ व ज़ुहूर क़लम। तारिक बिन शहाब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ये निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, जान पहचान के लोगों को सलाम कहना, तिजारत का आम होना, हत्ता कि बीवी अपने शोहर की तिजारत में मददगार होगी, क़त्अ रहमी, झूठी गवाही देना, सच्ची गवाही को छुपाना, और क़लम का ज़ाहिर होना। इन तमाम अहादीस से क्या पता चलता है कि ये तमाम काम आम हो जाएंगे क़यामत के करीब। और ये हम पीछे अहादीस पढ़ चुके हैं, एक्चुअली सेम वही अहादीस हैं। फिर सूल मुजावरती, हमसाय से बुरा सलूक। क़यामत قیامت کے قریب لوگ ہمسائے کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یحب الفحش والتفحش او یبغض الفاحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم السوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين رواه احمد حدیث صحیح۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا، یا آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کتنے واضح طور پر کچھ باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلی بات تو فحش گوئی کے بارے میں بات ہے کہ فحش گوئی عام ہوگی، یا اللہ تعالیٰ فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ فحش گو مطلب جو بے حیائی کی باتیں کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ہے آج کا ہمارا، جو سیریل، جو ڈرامے، جو فلمیں، یہ سب کیا ہے؟ فحش گوئی پر مبنی ہے۔ پھر کچھ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا پسندیدہ ٹاپک ہی ہوتا ہے بے حیائی کے بارے میں باتیں کرنا، تو یہ سب بھی کیا ہوگا؟ قیامت کے قریب عام ہو جائے گا، فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو فحش گو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے بھلا؟ یعنی وہ تو ایک طرح سے دشمنی ہوئی نا۔ بہرحال ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان پر ایسے کوئی فحش الفاظ نہ آئے، اور فحش صرف یہ بے حیائی والی بات ہی نہیں ہے بلکہ گالی گلوچ کو بھی فحش کہا گیا ہے، تو گالی گلوچ، فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں، وہ سب اسی میں آ جائیں گی۔ تو یہ عام ہو جائے گی، قطع رحمی کی جائے گی، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے گا، اور خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ یعنی تم ایک قرب قیامت کی نشانی ہے، تم انتظار کرو قیامت کا اس وقت، ایسا جب ہونے لگے تو جیسے اس میں پڑوسی کے حق کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واللہ وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی پڑوسی کے اتنے سارے حقوق ہیں، اور پڑوسی کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے شر کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ رہے۔ تو اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں سے پڑوسیوں کے تعلقات کیسے ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، ہر ایک دوسرے کی کچھ نہ کچھ دشمنی میں لگا ہوا ہے، اور حالانکہ یہی قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جتنا پڑوسی ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے کوئی اور نہیں آ سکتا۔ جیسے اللہ نہ کرے کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن آ جائے، تو آپ دیکھیں کہ آپ رشتہ داروں کو فون کریں گے، اپنے دوستوں کو فون کریں گے۔ فون کرنے سے پہلے کون آ سکتا ہے آپ کے پاس آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے؟ ہمسائے، آپ کے پڑوسی۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے ہمسائے کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو، ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایون یہ بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی دیوار اونچی کر کے پڑوسی کو تکلیف نہ دو گے، تم اس کے گھر کی روشنی روک لو۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں پڑوسی کے تعلق سے ملتی ہیں۔ پھر خود غرضی عام ہوگی، الشح، قیامت سے پہلے خود غرضی عام ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقی الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج، قالوا یا رسول اللہ ایما ہو؟ قال القتل القتل، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا، خود غرضی پیدا کر دی جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قتل قتل۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ آج آپ پوری دنیا کے حالات دیکھیں، کوئی ملک اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اور کچھ ممالک میں تو خاص طور سے اس قدر ہی نہیں جو इतने दिन से वहां पर आपस में जो खाना जंगी चल रही है, तो कत्ल करने वाले को नहीं मालूम कि मुझे मकतूल, मुझे कत्ल क्यों किया गया? यानी कातिल को भी नहीं मालूम कि उसने क्यों कत्ल किया, और मकतूल को भी नहीं मालूम कि मुझे क्यों कत्ल किया गया। इस कदर कत्ल आम हो गया है और इस कदर खाना जंगी है कि कहीं अमन व अमान नहीं है। और वाकई में हम देखते हैं कि हर तरफ कत्ल व गारतगिरी आम है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि अमल कम हो जाएगा। और आप देखिए कि बातों बातों में लोग वक्त इतना ज़ाया करते हैं, यानी अमल नहीं कर रहे हैं, बातों में वक्त गुजार रहे हैं, टीवी देखने में वक्त गुजार रहे हैं। तो जब टीवी देखने में वक्त गुजर रहा है, इंटरनेट पर वक्त गुजर रहा है, बेकार के कामों में बातें करते हुए वक्त गुजर रहा है, तो अमल तो ख़त्म ही हो जाएगा, अमल नहीं रहेगा। खुद गर्जी पैदा हो जाएगी या कर दी जाएगी। यानी हर कोई बस सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचेगा, दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। फितने ज़ाहिर होंगे, यानी और हर फितना आने वाला एक से बढ़कर एक होगा, और हर्ज बढ़ जाएगा। और हर्ज क्या है? कत्ल। फिर अगली हदीस से, अबी हुरैरा रदी अल्लाह अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما هو وما الهرج قال القتل رواه مسلم। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब वक्त घट जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, फितने जाहिर होंगे, लोगों के दिलों में खुद गर्जी पैदा कर दी जाएगी और हर्ज आम हो जाएगा। साहबे कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज क्या है? आपने इरशाद फरमाया कत्ल। और आप देखें कि वक्त घट जाएगा, ये बहुत अहम पॉइंट है। यानी आज इतनी ज़्यादा हमारे पास वक्त की कमी है कि आपने देखा होगा कि हर कोई वक्त का रोना रोता है, हर कोई ये कहता नजर आता है कि क्या करें, वक्त ही नहीं मिला, या वक्त नहीं मिल पाता है, या वक्त की कमी हो गई है, बहुत बिजी हैं हम, टाइम किधर जा रहा है, किधर पास रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और हम में से हर कोई इस बात को फील करेगा। आप देखिए हफ्ते और महीने और दिन और साल कितने जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। एक हफ्ता वीकेंड यूँ आ जाता है और ऐसे लगता है कि अच्छा अभी तो वीकेंड गुजरा था, फिर वीकेंड आ गया। तो वक्त तेज़ी से गुजरेगा, वक्त घट जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। और पहले हमने पढ़ा था कि इल्म कैसे उठा लिया जाएगा, ऐसे ही नहीं उठा लिया जाएगा, बल्कि जो अच्छे आलिम होंगे उनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी, और जाहिल लोग उलमा होंगे और फिर उनसे लोग फतवे पूछेंगे और गुमराह होंगे, और फितने जाहिर होंगे, खुद गर्जी पैदा कर दी जाएगी और हर्ज आम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें इस खुद गर्जी से बचाए और हमें फितनों से महफूज रखे। आगे इसकी दुआ भी हमें बताई गई है कि ऐसे वक्त में हम क्या करें और कौन सी दुआ हम पढ़ें, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फितनों से महफूज रखे और हमारे वक्त में बरकत दे, अल्लाह ताला हमारे अंदर फयाजी पैदा करे और खुद गर्जी से हमको बचाए, कतर रहमी से हमको अल्लाह ताला महफूज रखे, हमारे दिल के, हमारे घर के, हमारे फ्रिज के दरवाजे सब के लिए खुले हों, हम तंग दिल और तंग जहन लोग ना हों, बल्कि अल्लाह ताला हमारे अंदर वसअत क़ल्बी पैदा करे और हमें देने वाला बनाए, हमें रोकने वाला ना बनाए, ताकि अगर आज हम देंगे तो अल्लाह ताला भी हमें फिर गिन गिन कर नहीं देगा। और ख़ुसूसन ये जो खुद गर्जी की बात की गई है, तो उससे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, क्योंकि मुझे लगता है कि खुद गर्जी जो दिल तंग कर देती है असल में, और ये खुद गर्जी की वजह से फिर बहुत सारी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। तो अगर हम खुद गर्जी से, तंग दिली से, थोड़ी दिलेपन से अगर हम बच गए, तो बहुत सारी बुराइयों से हम खुद ब खुद बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये खुद गर्जी हमें नहीं होनी चाहिए। जो दिल की तंगी, जो शोह होता है ना, दिल की तंगी की जो बात है, यानी ये इंसान को किसी खैर के काम का नहीं रखता, यानी फिर उससे कोई खैर हो नहीं सकता जिसके अंदर शोह पैदा हो जाए। जैसे कि कुरान में हम पढ़ते हैं कि वमन युकशुह नफ्सही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि जो दिल की तंगी से बचा लिया गया बस वही फलाह पा गया। तो अगर हमको फलाह पानी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? शोह नफ्स से बचना पड़ेगा। और ये बखीली से भी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ है। यानी एक तो होती है कंजूसी, एक होती है बखीली, और उनसे भी ज़्यादा वर्स्ट अगर कोई चीज़ होती है तो वह शोह, दिल का शोह, दिल की तंगी का जो यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये दिल की तंगी इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। लिहाजा हमें क्या करना है? दिल की तंगी से बचना है। हमको अल्लाह ताला से वसअत क़ल्बी की दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला हमारा दिल बड़ा कर दे हर मामले में, चाहे वो अल्लाह की राह में काम करना हो, दीन का काम करना हो, चाहे वो लोगों को देना दिलाना हो, रिश्तेदारों से ताल्लुकात हो। क्योंकि जब खुद गर्जी पैदा होगी तो हम सिर्फ अपने हकूक़ मांगेंगे और लोगों को उनके हकूक़ देने पर राज़ी नहीं होंगे। दिल की तंगी की वजह से ना कभी हमारा हाथ कुशादा होगा देने के मामले में, ना दिल कुशादा होगा, और फिर वो दिल तंग होगा तो फिर हर चीज़ हम रोक रोक कर रखेंगे। جبکہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ ہم دینے والے بنیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم دے دیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے پاس جو بھی آتا تھا آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. ایون بعض وقت ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی سائل آیا اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں اگلی دفعہ دے دوں گا. اور بعض وقت آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کو میری طرف سے ادا کر دے، تو کئی صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی آپ کی نیت تھی دینے کی، یعنی آپ کی نیت دینے کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انتظام بھی کروا دیتا تھا. تو ایسا ہی ہمارا بھی معاملہ ہے کہ ہم دینے والے بنے، دل ہمارا کھلا ہو، ہمارے ہاتھ کھلے ہوں، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر نہ رکھیں. مغلولہ جو لفظ آتا ہے کہ اپنی گردن سے ہم نہ باندھیں ہاتھوں کو، بلکہ کشادہ دلی اختیار کریں، دینے والے بنیں، دل کی تنگی اور دل کی گھٹن میں ہم مبتلا نہ ہوں. تو دینے والے بنیں گے تو خود بخود ہمارے اندر سے بہت ساری خرابیاں، جو دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے خاص ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنگ دلی سے، شوہ سے اور خود غرضی سے بچائے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.